जब आप ज्ञान में होते हो, ध्यान में होते हो, अध्यात्म पथ में होते हो, सारे ग्रह आपके अनुकूल होने लगे।
मौत से डर क्यों लगता है?
तीन चीज है डर से दूर होने के लिए, एक तो आत्मज्ञान, दूसरा अटूट प्रेम, तीसरा द्वेष।
ध्यान लगाने से चेतना का विकास होता है, इसका आयाम बढ़ता है।
मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हूँपन का या हैपन का अनुभव है वही चेतना।
गुरुदेव, भाग्य की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या आपको लगता है कि किसी का भाग्य बदला जा सकता है पूरी तरह से?
हाँ और नहीं।
गुरुदेव, एस्ट्रो और पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बचपन से आपके आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स को देखा है, मैं भी उसका फॉलोअर हूँ। आज आपसे बात करने चाहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग पे। सो मौत से डर क्यों लगता है लोगों को?
डर और किससे लगेगा, डर तो मौत का ही होता है। मौत माने सिर्फ शरीर छोड़ना ही मौत नहीं है, रेपुटेशन का मौत भी मौत है। कोई भी चीज खोने की जो है ना बातें डर लगती है, और ये डर तभी तक है जब तक हम अपने को नहीं जानते, हम कौन है, हमारी चेतना क्या है। जब ये बात हमको समझ में नहीं आती है, इसका अनुभव में नहीं होता है, तो डर लगता है।
कैसे जानेंगे खुद को?
तीन चीज में डर नहीं होता, एक्चुअली दो चीज। एक तो प्रेम, आप इतना गहरा है प्रेम में किसी से पड़ जाते हो तो फिर डर नहीं होता, चाहे देश प्रेम हो या किसी के भी प्रेम, भगवान प्रेम हो, फिर डर नहीं होता जीवन। दूसरा द्वेष, आप जी आतंकवादियों को देखो, टेररिस्ट को देखो, उनमें इतना द्वेष भरा हुआ होता है तो उनको किसी चीज का डर नहीं लगता।
तो प्रेम और द्वेष में डर नहीं लगता,
प्रेम और द्वेष में डर नहीं लगता, इसके अभाव में डर लगता रहता अज्ञानता से। तो तीन चीज है डर से दूर होने के लिए, एक तो ज्ञान, आत्मज्ञान, दूसरा अटूट प्रेम, तीसरा द्वेष।
मुझे लगता है जैसे कि हम ना चाहत बहुत कर लेते हैं, ये जो माया है हमारे आसपास, इनसे लगाव बहुत है, इनसे अटैचमेंट बहुत है। या फिर कई लोगों से जैसे पूछो कि अगर आप मर जाएंगे तो आप क्या करना चाहेंगे उससे पहले, तो अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना, तो परिवार का भी प्रेम है, ठीक है, पर आप कह रहे हो प्रेम से तो डर छूट जाता है, पर परिवार के प्रेम से तो हमें मरने का डर लग रहा है।
प्रेम का छूटने का डर होता है कि प्रेम हमारा जीवन है।
हाँ,
और हमको ये लगता है हम प्रेम खो देते हैं तो हम मर जाएंगे। तो जिसके साथ तादात्म्य बन जाता है वो हमारा जीवन हो जाता है और उससे डर लगता है।
गुरुदेव, मृत्यु के बाद का कोई सफर होता है?
अवश्य,
कुछ बताइए।
वापस जन्म। हाँ, मृत्यु के बाद फिर समय के लिए इंतजार करते रहते हैं, जब समय मिलता फिर आ जाते हैं दुनिया में।
कोई स्टेजेस होती हैं?
हाँ, जो पूरी नहीं हुई है इच्छाएं आशाएं जिसको लेके मरते हैं, उसको पूरा करने के लिए आना पड़ता है। तो मरने के बाद तो कुछ दिन पहले तो कंफ्यूजन होता है, अरे भाई शरीर तो पड़ा हुआ है और हम इसके साथ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खुद का ही शरीर है, लोग रो रहे हैं, देख रहे हैं, मगर जो भय था पहले मरने का वो समाप्त हो जाता है, एक सुकून शांति सब होता है। फिर योनि है, उसके बाद प्रेत, प्रेत बन के रहते हैं कुछ दिन तक, फिर पितृलोक में जाते हैं।
कुछ मैंने देखे 7 स्टेप होते हैं।
हाँ, गिनने की बराबर, आई मीन किसी अलग अलग गिनतियां हैं इसमें, कोई 7 बोलते हैं, कोई 3 बोलते हैं, कोई 5 बोलेंगे।
तो जैसे कोई प्रेत योनि में आ गया गुरुदेव, तो उससे बचने का कोई तरीका है? मतलब आने के बाद कुछ होता है ऐसा? मतलब मैं तो कुछ नहीं पता, ऐसे पूछ रहा हूँ।
नहीं, कुछ समय बिताते हैं फिर वापस आना।
अच्छा, एक टाइम पीरियड होता है। ओके, का डर की बात हमने करी, मृत्यु के बाद का जो प्रोसीजर है, हमारे हिंदू धर्म में कई सारे गॉड बनाए गए हैं, जैसे यमराज मृत्यु के देवता, और
बनाई नहीं,
हाँ जी,
हिंदू धर्म में इनको पहचाना है,
पहचाना है
ये है। मगर जैसे हम सोचते हैं भैंस पर सवार होके यमराज गदा लेके आया, ऐसा नहीं। चेतना के अलग अलग गुण हैं और रूप हैं, उसमें मृत्यु में भी हुए।
चेतना की आपने बात करी गुरुदेव, ये चेतना अगर एक लाइन में समझाना हो किसी को, कैसे समझाएंगे?
जिससे तुम सुनते हो, ये बात सुन रहे हो, जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे आप सोचते हो, समझते हो, कोई भी अनुभव करते हो, वही चेतना।
और इसी चेतना को समझने की जरूरत है।
चेतना को समझोगे तो फिर वो बात एक अलग स्तर की होती है। जैसे एक बेहोश आदमी और जो होश में वाला आदमी में क्या फर्क है, वही है, दोनों जीवित है। बेहोश आदमी भी जीवित है, मर उसको कुछ नहीं पता चाह रहा हूँ। एक होश वाला आदमी को ऐसा पता, इधर पौधा है, इधर माइक है, यार उन बैठे हैं, ये सब होश में तो समझ में आता है ना। ऐसे मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हूँपन का या हैपन का अनुभव है, वही चेतना।
तो चेतना तो सब में होती है, फिर हम
पत्थर में भी है चेतना,
निर्जीव चीजों में भी,
हाँ सब चीजों में चेतना, पत्थर से लेके ब्रह्म तक, कीड़ों से लेके ब्रह्म, सब चीज चेतना ही है।
सो ध्यान लगाने से चेतना का विकास होता है, इसका आयाम बढ़ता है।
हाँ अवश्य।
जैसे किसी को ध्यान के बारे में नहीं पता गुरुदेव, तो ध्यान के कुछ अनुभवों के बारे को आप शेयर कर सकते हैं, क्या अनुभव होगा ध्यान करने के बाद, मैं क्यों करूं मेडिटेशन?
हाँ ये बात सोचा, ध्यान क्यों करें भाई, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखो, बाकी तो धार्मिक मान्यताएं सब एक तरफ रख देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखोगे तो ध्यान करने से शरीर में रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है, ताकत आ जाता है, हमारे शरीर के जो कण कण में उत्साह भर जाता है, फिर नर्वस सिस्टम मजबूत होती है, शरीर में बैलेंस आ जाता है, संतुलन आ जाती है। इस तरह से 100 से अधिक बेनिफिट ध्यान का है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसके अभाव में क्या होता है, दर्द, दुख, पीड़ा, गुस्सा आ जाना, अपने मन पर काबू न रहना, तरह तरह की मानसिक परेशानियां, व्यावहारिक संबंधों में, हमारे संबंधों में खुन्नस, व्यवहार में हमें इससे चोट पड़ती है, तरह से कई तरह की जो झंझट हमको झेलना पड़ता जीवन में, इन सब का समाधान ध्यान में पाओगे।
कई लोगों से मैं मिला जो ध्यान लगाते, कहते शुरुआती स्टेज में जब 2-3 दिन होते डर बहुत लगता है या बुरे सपने आते हैं।
नहीं नहीं, इसीलिए गुरु चाहिए। गुरु के बगैर कोई ऐसे सुन के ध्यान करेगा तो समझ में नहीं आएगा, भाई तो GPS होने से तुम्हें गाड़ी चलाते हो तो पता चलता है तुम कहाँ जा रहे हो।
क्या डर लगना स्वाभाविक है गुरुदेव? ये
नहीं, ध्यान से डर नहीं लग, ऐसा नहीं, डर तो हर चीज में लग सकता है भाई। सड़क पे ड्राइव करने में डर है, किसी को हवाई जहाज में उड़ने में डर है, किसी को पानी को देख के डर होता है, किसी को ऊंचाइयों को देख के डर होता है। ये इन सब का मूल ये है कि हमारे भीतर एनर्जी, शक्ति जो है, इसको हमने फ्री फ्लो करने नहीं दी। अवरोध आ गया, तनाव से भरे हुए हैं, वो तनाव ही भय के रूप में हमें अनुभव में आने लगता है। प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, सुदर्शन क्रिया करोगे, सब करने से कर भाई अपने आप निकल आते।
आपने बैलेंस की बात करी थी अभी कि जीवन बैलेंस हो जाता है। एक इंसानी जीवन को देखा जाए तो हमें अपने इमोशंस प्रोसेस करने का या तो वक्त नहीं मिलता या हमें आता नहीं, कि किसी से नफरत हुई या किसी से प्यार हुआ है, वो छोड़कर चला गया तो दुख हो रहा है, ब्रेकअप का दुख हो रहा है, इस दुख को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो लोग अपनी जान तक लेने पे आ जाते हैं, तो ये इमोशंस को प्रोसेस करने में भी ध्यान मदद करे।
यही तो बात है। क्रिया करिए लोग, थोड़ी देर बैठ के सुदर्शन क्रिया करें। हम यहाँ अक्सर मैं कहता हूँ, यहाँ जो टूटे हुए दिलों को हम जोड़ते हैं, यहाँ कितने ऐसे तो कितने लोग आते हैं यूनिवर्सिटी से, आईटी प्रोफेशन से, लोग इस तरह से जिनका दिल तोड़ दिया किसी ने या टूट गया, कुछ हुआ।
दिल टूट सकते हैं वैसे गुरुदेव?
होता तो है,
ये बस एक वो है।
दुखी हो जाते हैं लोग, जैसे अपने बताया ना, कोई छोड़ के चले गए अपना साथी संगाती जो भी, तो इन सब के लिए उपाय या निदान यही है, हमारे भीतर की प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को मजबूत करना। तब जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तब इन सब चीजों से निकल जाते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता।
सही, आज आपने उपाय बता दिया, कईयों का काम बन जाएगा। सुदर्शन क्रिया की आपने बात करी गुरुदेव, थोड़ा समझाएंगे क्या क्रिया है ये?
सुदर्शन देखिए, हमारे शरीर में एक तरह का लयबद्धता है। आपको रात को नींद आती है, सुबह भूख लगता है, फिर शौच के लिए शरीर मांगता है, इस तरह से अलग अलग समय पर हम अलग अलग क्रियाएं शरीर से होती रहती है। इसी तरह से सीजन में भी, मौसम देखिए, मौसम में धूप गर्मी ज़्यादा होता है, तो फिर प्रकृति में भी एक लयबद्धता है, कभी बारिश, कभी ठंडा, कभी गर्म। और हमारी सांस में भी इस तरह के अलग अलग रिदम्स होते हैं, लयबद्धता आती है। हमारे विचारों में होते हैं, ऐसे हमारे भावनाओं में। आप देखो कि सुबह आपका मन में जो भावनाएं थी, शाम को वह नहीं होती है, शाम को जो होता है वो रात को नहीं होती है, रात को भावनाएं दोपहर में नहीं होती वो। इस तरह से हमारे भाव में भी एक लयबद्धता आप पाए, विचारों में भी ऐसे कभी कभी संशय ऐसा पकड़ लेता मन को, हम समझ नहीं पाते, हर चीज में संशय होने लगता है, जान कर के भी हम उसे बाहर नहीं आ पाते, कई बार चिंता में पड़ जाते हैं और जानते हैं ये चिंता फिजूल है, व्यर्थ, फिर भी वो करने से रोक नहीं पाते अपने आप। इन सब जो एक अलग अलग लाइफ है, इन सब में एक हाव समरसता लाना, ये क्रिया करते हैं सांस के जरिए, दो दिन में कोई भी सीख सकता है। इसे वैसे नहीं सीखते, पेट टेलीविजन देख के कोई सीख ले, ये नहीं संभव है। इसके लिए शिक्षक होते हैं, शिक्षक के पास बैठ जाएं, वो क्लासेस चलते रहते हैं सब जगह, पता लगाए, और ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होता है, तो शिक्षक के साथ ये सीख लेंगे, 10 मिनट में आप पाएंगे हमारे भीतर अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है, हमारे कर्म, कई कर्म धुल जाते हैं, तो भाग्य खुलने लगते हैं, जो हम चाहते उस दिशा में हम जाने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे आत्मा की वो लयबद्धता से हम जुड़ जाते हैं,
सिंक हो जाता है। गुरुदेव, ध्यान या ये जैसे क्रिया बताई है, ये कौन सी उम्र में करना सही रहता है?
8-10 साल से शुरू कर,
बचपन से ही कर सकते हैं। और जैसे मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी का भी एक रास्ता है, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो आप, पहले तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी क्या है समझा दीजिए, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है।
देखिए, आध्यात्मिक शक्ति वही है जिसके बिना कोई रह नहीं सकता, सबके अस्तित्व के आधार है आध्यात्मिक, इसीलिए आधार बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक शक्ति ही अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप सोते हो, क्यों सोते हो? सोने से सुकून मिलता है, आराम मिलता है, जागने पर ताकत महसूस होता है शरीर में, ऐसे आध्यात्मिक शक्ति में क्या होता है, जीवन जीने की के लिए एक उमंग, उत्साह और विशाल दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि, दूर दृष्टि, ये सब हमको प्राप्त होने लगता है।
कोई एंड गोल है स्पिरिचुअलिटी का कि अंत में जाके ये मिलेगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एंड मिलेगा वैसे कहा जा सकता है कि जीवन में आनंद की प्राप्ति, मैं कहूँगा कि वो आनंद की प्राप्ति शुरू से ही मिलने लगेगा। ऐसा नहीं आप 10 साल साधना करो फिर जाके कभी मिलेगा, ऐसा नहीं।
कुछ तो फर्क होता होगा गुरुदेव की एक शुरू के साधक में और एक जैसे आप हैं, आप
हाँ
सालों साल आप
इसमें कोई अंत नहीं, गति में इस ज्ञान में गहराई में जाते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, अनेक सिद्धियां प्राप्त होने लगती है अनायास, फिर मुक्त होते हैं।
सिद्धियां इस तरह जादू टाइप का कुछ?
हाँ होता है काफी, कोई जादू करके दिखाने वाले जादू में पढ़ना नहीं चाहिए, वो तो बरोबर बहुत छोटी सी बात है, मगर पवाड़ तो होते रहते हैं।
गुरुदेव अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये एक अच्छा उपाय है, ठीक है, और भाग्य बदलने का, ज्योतिष भी ऐसी कुछ बातें करता है कि आप उपाय करें भाग्य के बारे में समझें। ज्योतिष के, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो ज्योतिष के बारे में आपका क्या विचार है एज अ सब्जेक्ट?
ज्योतिष तो एक विज्ञान है मेरे हिसाब से, जैसे मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म का संबंध बताता है, जैसे अणु से ब्रह्मांड का संपर्क क्या है, संबंध क्या है, ये बताता है। आजकल विज्ञान भी और वैज्ञानिक भी बहुत नजदीक आए, हर चीज दूसरी चीज पर असर करती है, और हमारे पुरातन सनातन पद्धति में, वैदिक पद्धति में ये देखा गया है कि मंत्र और वस्तु ये सब ग्रहों से और स्वभाव से सबसे जुड़ी हुई है, इस पर गहरा अध्ययन किया गया। जैसे तिल शनिश्चर के साथ, शनि देवता के साथ तिल जुड़ा हुआ है, चना हो तो मंगल का बोलते हैं, इस तरह से वस्तु उसका गुण और ये द्रव्य गुण ये सब संबंध दिखाता है। तो अणु से लेके महत्तत्व तक एक धारा है, तो इसको बताने वाला ये ज्ञान है, मगर इसमें ऐसा नहीं कि अक्सर लोग समझते हैं ये फेटलिस्टिक व्यू है, ऐसा है तो 7.5 तो ऐसा ही होगा, सबका नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शनि भगवान माने डर डर के शनि, अरे शनि चर आ गया 7.5 लग गया, ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं, शनि तो बहुत अच्छा भी करते हैं। जब आप ज्ञान में होते हो, ध्यान में होते हो, अध्यात्म पथ में होते हो, सारे ग्रह आपके अनुकूल होने लगते, और आप अज्ञानता में ज्यादा पड़े हुए होते हो, छोटे मन पे होते हो, छोटे स्वभाव में स्वार्थी होते हो, तो अच्छे बड़े भले ग्रह भी आपको तंग करने लगे। इसलिए काल का अपना प्रभाव है और मन का काल पर प्रभाव है, काल का अपना मन पर प्रभाव है, और यदि मन मंत्र के जरिए अपने आप को अध्यात्म क्षेत्र में लगाए, मजबूत हो, तो उस मन का भी काल पर प्रभाव हो जाता है,
रिवर्स इंजीनियरिंग। गुरुदेव भाग्य की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या आपको लगता है कि किसी का भाग्य बदला जा सकता है पूरी तरह से?
हाँ और नहीं।
इंटरेस्टिंग है इसका आंसर।
जैसे आप हलवा बनाते हो
जी,
हलवा बनाते हो तो हलवा में यदि सूजी का हलवा मान लो, प्रसाद बनाते, प्रसाद उसमें मीठा कम हो तो क्या करोगे? चीनी डालो। मीठा ज्यादा हो जाता है तो
और हलवा
सूजी डाल दोगे उसमें, और सूखा हो गया तो घी डालोगे, ज्यादा घी हो गया तो
और सूजी डालो,
सूजी डालोगे, बाकी सब तो बदल सकते हो, मगर एक बार जो सूजी पक जाता है उसको तो वापस सूजी बना सकते हो क्या?
नहीं।
ऐसे ही भाग्य में बहुत सारी चीजें हम बदल सकते हैं, जैसे आपका कद, कितने कद के हो आप?
5 फुट 7 इंच।
क्या आपका वजन क्या है?
80 किलो।
80 किलो। तुम 80 को 100 भी ले जा सकते हो, 60 भी ला सकते हो।
हाँ जी।
मगर 5 फुट 7 इंच का जो आपका कद है, ये बदल पाओगे क्या?
नहीं नहीं
नहीं। इस तरह से आप में दोनों हैं, कुछ आप बदल नहीं सकोगे। आपका कद तो आप नहीं बदल सकते, आपका मोटापा को तो आप ये नहीं कर सकते, अरे ये सब मेरा कर्म है भाई, मैं तो अभी 80 किलो का हो गया और 200 किलो का मैं हो गया, मैं क्या करूं? ये कहेंगे तो ये बेईमानी है ना। मैं कहूँगा वो रोटियां कम करो, मिठाई बंद करो, देखो कैसे नहीं उतरेगा वजन। तो भाग्य ऐसा ही है और भाग्य हमको मिलता है, हम इसका सदुपयोग करें तो भाग्य बढ़ता रहता है। यदि हम ध्यान न दें तो भाग्य भी ऐसा आएगा, ऐसा चला जाएगा।
कोई धन के रास्ते पे निकलता है गुरुदेव, तो क्या उसका ध्यान भी ध्यान की तरफ जा सकता है?
हाँ हाँ। देखो, आप जीवन में यशस्वी होना हो, व्यापार में यशस्वी पाना हो, पढ़ाई में आगे करना हो, किसी भी स्पर्धा में तुम्हें आगे निकलना हो, इन सब परिस्थिति ध्यान आपके लिए सहायक ही होगा। क्यों? ध्यान कैसा है वो, जैसे आप बैंक में जाते हो, जब आपको बाजार में जाना ही नहीं तो बैंक में जाने का मतलब क्या है? जो संसार छोड़ के बैठ जाते हैं वो तो समाधि में रहते हैं, तो प्रसन्न रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं। मगर जूझना पड़ेगा तुम्हें तरह तरह के लोगों से, हर तरह की समस्या को सामना करना पड़े, तभी ना आपको ऊर्जा चाहिए, तभी ना आपको मनोबल चाहिए। अरे मनोबल लेके घर में बैठ गए तो कहीं कंदरे में, हिमालय के कंदरों में बैठ के हमको, हमारे पास मनोबल है तो क्या फायदा उसका? मनोबल वही चाहिए जहाँ पर आपको काम में आए वो, और संसार में ये सब करने के लिए हमें काम में जरूर मनोबल की आवश्यकता है, वो ध्यान से मिलता है।
युग निद्रा क्या है इसके बारे में?
देखिए, जब एक इमारत को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, पहले क्या करते हैं? नीचे खोदते हैं
जी।
इसी तरह से हम अपने मन को विश्राम देना चाहते हैं, मन को विकसित करना चाहते हैं, तो हम उस मन को वापस अपने शरीर के अंगों में लेके आते हैं। निद्रा में क्या करते हैं? निद्रा तो सो ही जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ हम क्या है। योग निद्रा में, निद्रा जैसे ही हम विश्राम करते हैं और मन को शरीर के विभिन्न अंगों के पास ले जाते हैं, अंगों से गुजारते हैं, तब हमें क्या होता है कि मन करते करते ऐसे करते करते मन ध्यानस्थ होने लगता है। योग निद्रा में एक अलग ऊर्जा हमारे भीतर से पैदा होती है, शरीर इससे शरीर को स्वास्थ्य का लाभ होता है, मन को भी इसे काफी लाभ मिलते हैं। योग निद्रा करना बहुत आवश्यक है। 20 मिनट के समय में योग निद्रा करने से आपको कोई 4-5 घंटे की नींद में जितनी आराम मिल जाती है उतना मिल जाता है।
आपकी फेवरेट कोट, कोई आपकी फेवरेट लाइन?
देखिए, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ना कोई मेरा नापसंद की, ना किसी चीज से राग है हमें, ना किसी चीज से।
यही लाइन है आपकी, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, सबसे प्रेम है। गुरुदेव, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।